प्रस्तुत है आज का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। डोनाल्ड ट्रंप को आगामी अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी द्वारा आधिकारिक तौर पर नामित कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को मॉलविकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में सभी 2,387 वोट मिले हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप को निशाना बनाकर किए गए हत्या के प्रयास की निंदा की है। आपको बता दें कि हाल ही में तीसरी बार रिपब्लिकन नामांकन स्वीकार करने से कुछ ही दिन पहले पेनिसलाविया की एक रैली में डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट करने का प्रयास किया गया था। वहीं यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि वे इजरायली अधिकारियों से मंजूरी के बाद अपने मानवीय सहायता अभियानों के लिए गाजा में और अधिक बख्तरबंद वाहन और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण लाना शुरू कर देंगे। ये निर्णय इसराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में सुरक्षा के लिए पिछले महीने इसराइल को भेजे गए संयुक्त राष्ट्र के पत्र के जवाब में लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के 4 बड़े बैंकों पर जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहने का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा एक रिपोर्ट के बाद पता चला है कि उन्होंने पिछले साल जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल परियोजनाओं के लिए $3.6 बिलियन का लोन लिया था। बैंकिंग क्लाइमेट फेलियर रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कॉमनवेल्थ बैंक, ANZ, NAB और वेस्टपैक ने पेरिस जलवायु समझौते के बाद से जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं के लिए कुल $61 बिलियन का लोन दिया है। एक नए सर्वेक्षण से पता चलता है कि जीवन यापन की लागत के संकटों के कारण फेडरल लेबर चुनाव में पिछड़ रही है। नवीनतम रिजॉल्व पोल जो कि 1600 मतदाताओं को मद्देनजर रखकर किया गया था, ये दिखाता है कि सरकार का प्राथमिक वोट 28% है और गठबंधन 36% से बढ़कर 38% पर आ गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया घरेलू हिंसा की बढ़ती दरों से जूझ रहा है, नॉर्दर्न टेरिटरी में पीड़ितों को फंडिंग की कमी के कारण पर्याप्त सहायता नहीं मिल पा रही है। सामाजिक सेवा परिषद की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि सहायता प्रदान करने वाले 41% संगठन लागत वृद्धि को पूरा करने में असमर्थ हैं और कई ऐसे मुद्दों से त्रस्त हैं जो कि अल्पकालिक सरकारी ग्रांट से जुड़े हैं। वहीं सिडनी में एक अंडरग्राउंड मोटरवे इंटरचेंज प्रोजेक्ट की नई रिपोर्ट में पाया गया है कि इस परियोजना में सार्वजनिक हित पर वित्तीय रूप से प्रेरित डिजाइन को प्राथमिकता दी गई है। $3.9 बिलियन के रोजेल इंटरचेंज की न्यू साउथ वेल्स संसदीय जांच में सुबह के आवागमन के समय में वृद्धि और ट्रैफिक की बिगड़ती स्थिति के लिए इस परियोजना की आलोचना की गई है। बात करें भारत की तो उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नेपाल बॉर्डर की नदियों के साथ ही गंगा भी उफान पर है और वाराणसी में गंगा का जलस्तर हर घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। ऐसे में 30 गांव डूब गए हैं और मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गोवा के लिए आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।